प्रिय विद्यार्थियों, तो सुधांशु कुमार पांडे। अभी तक हमने यूनिट थर्ड में मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग के विषय में अध्ययन किया। आज हम कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे, विमर्श करेंगे। कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ टीचिंग यानी कि द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग या कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ टीचिंग वस्तुतः जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये कहती है कि मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास या बोधात्मक विकास कुछ निश्चित संज्ञानात्मक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और ये संज्ञानात्मक अवस्थाएं जीन पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई हैं। पहली है सेंसरी मोटार स्टेज जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, मुख्य टेंडेंसीज होती हैं कि इसमें जो थिंकिंग होती है बालक की वो सेंस ऑर्गन रिलेटेड होती है। सेंसरी मोटार थिंकिंग होती है यानी कि जो उसकी सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्ति करता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है और उन्हीं के माध्यम से ही अपनी आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। बालक इस अवस्था में यह समझ जाता है कि वह और उसका वातावरण 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। साथ ही उसको लेटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज की लेटर स्टेज में यानी कि 2 वर्ष के आसपास, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तुओं के स्थायित्व, वस्तुओं में स्थायित्व का जो गुण है कि वस्तुएं यदि मेरी आंखों के सामने नहीं हैं उसके बावजूद भी उनका अस्तित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस कॉन्सेप्ट से वो परिचित हो जाते हैं। दूसरी स्टेज जो पियाजे ने बताई थी वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। यह 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इसमें विद्यार्थी, इसमें बालक प्रतीक सीखते हैं, इस कारण से वे भाषा सीखते हैं। प्रतीकों के सीखने कारण, सिंबल्स को सीख जाने कारण वे भाषा सीख जाते हैं और ये जो उनकी जो विचार प्रक्रिया है, उनकी जो रीजनिंग है वह भाषा युक्त हो जाती है। जबकि उनकी जो रीजनिंग है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, ये इमेजिनेटिव होती है और इंट्यूटिव होती है। और इसमें जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वो इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। तीसरी अवस्था जो पियाजे ने बताई थी वह है मूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें जो बालक होते हैं वो संरक्षण यानी कंजर्वेशन का सिद्धांत सीख जाते हैं, वो रिवर्सिबिलिटी सीख जाते हैं। कंजर्वेशन का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि वो ये समझ जाते हैं कि एक लंबे गिलास में रखा हुआ पानी और उसको अगर छोटे गिलास में डाल दिया जाए, चौड़े गिलास में डाल दिया जाए, तो उस पानी की मात्रा नहीं बदलती है। साथ ही वह रिवर्सिबिलिटी सीख जाते हैं यानी कि जहाँ से वे प्रारंभ करते हैं और अंत तक पहुँचते हैं तो अंत से प्रारंभ करके वो प्रारंभिक बिंदु तक पहुँच जाते हैं। जैसे अंकों में रिवर्सिबिलिटी 1 से लेकर के 100 तक की गिनती, उसके बाद 100 से लेकर के 1 तक की गिनती, किसी स्थान से प्रारंभ करके किसी मंजिल तक पहुंचना और उस मंजिल से प्रारंभ करके पुनः उसके प्रारंभिक स्थान तक पहुंच जाना, इस प्रकार रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी विद्यार्थी सीख जाते हैं। इस स्टेज में बालक का जो रीजनिंग होती है, जो तर्क होता है, लॉजिक होता है, उसको उसको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस के माध्यम से भी वो अपना रीजनिंग एंड लॉजिक प्रयोग में लाने लगता है। इसके अलावा है जो चौथी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 से 16 वर्ष तक और उसके बियॉन्ड। इसमें जो बालक होते हैं वो अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं, वो हाइपोथेसिस क्रिएशन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैरेक्टरिस्टिक उनमें दिखाई पड़ने लगता है। वो अपने आसपास स्थित समस्याओं के कुछ समाधानों को खोजने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग उनकी रोबस्ट हो जाती है इस समय, और इस प्रकार से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ आकर के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लगभग उस स्तर की हो जाती हैं जिस स्तर की हमारी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर ये मॉडल ऑफ टीचिंग, कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ टीचिंग का निर्माण किया गया। इस मॉडल ऑफ टीचिंग में जो मुख्य इसके प्रोपाउंडर रहे हैं, जिन्होंने इस्टेब्लिश की है, जिन्होंने इस मॉडल ऑफ टीचिंग को डिवाइस किया है, उनमें हम जीन पियाजे, सीगल आदि का नाम ले सकते हैं। इस प्रतिमान का, इस मॉडल ऑफ टीचिंग का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु, फोकस है, वह है विद्यार्थियों में अवस्थाजन्य संज्ञानात्मक योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, यानी कि वो जिस अवस्था में हैं उस अवस्था की जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, और यह जांचना कि उनमें जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर एज लेवल पे होनी चाहिए वो डेवलप हो गई हैं अथवा नहीं, इसकी कांस्टेंट, इसकी परख करते रहना, निरंतर इसकी परख करते रहना, ये इस मॉडल ऑफ टीचिंग का फोकस है। साथ ही साथ इसमें कुछ बिंदु और हम ऐड कर सकते हैं कि जो डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके संदर्भ में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बालक की डेवलपमेंटल स्टेज है, जिस डेवलपमेंटल स्टेज पर विद्यार्थी समय है, उस डेवलपमेंटल स्टेज के लिए जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उनको एक्वायर करने के लिए, उनको पाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना, प्लेटफॉर्म तैयार करना। साथ ही साथ इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल पर, जिस लेवल पर वह विद्यार्थी है, उस लेवल पर जो कुछ भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं और उससे रिलेटेड जो भी साइकोमोटर एबिलिटीज़ होती हैं, मनोगामक क्रियाएं होती हैं, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सोशल एक्टिविटीज़, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी रीजनिंग एंड लॉजिकल एक्टिविटीज़, जो मैथमेटिको लॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हारमोनियसली, समरस रूप से डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ये इस मॉडल ऑफ टीचिंग के फोकस है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडल ऑफ टीचिंग की सिंटैक्स क्या होगी, संरचना क्या होगी। तो इसमें कुछ चरण होते हैं, जिनमें से प्रथम चरण होता है कन्फ्रंटेशन विद स्टेज रेलिवेंट टास्क, यानी कि अवस्थाजन्य सार्थक कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना। इसमें विद्यार्थी को जो वह जिस अवस्था में है, जिस डेवलपमेंटल स्टेज पर है, उस डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेटेड जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य संभव हों, उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करना, ये पहली स्टेज है। और इस स्टेज में विद्यार्थियों के सम्मुख कुछ ऐसी कार्य परिस्थितियाँ रखी जाती हैं जो अपने आप में कुछ चैलेंजिंग हो, चुनौतीपूर्ण हो, कुछ उसमें उलझन हो, विद्यार्थी थोड़ा सा उसमें परेशान हो, वो समस्या में आ जाए और इस समस्या के समाधान को खोजने का वो प्रयास करे, वह उसमें समस्या का मूल ढूंढ ले, समस्या के कारणों का विश्लेषण कर ले आदि। इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है एक शिक्षक के रूप में कि विद्यार्थी की अवस्था यानी कि वह उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि विद्यार्थी के जो पूर्व अनुभव हैं उनके साथ उसका एसिमिलेशन हो जाए यानी आत्मसातीकरण हो जाए जो भी समस्या हम रखें। ऐसा ना हो कि विद्यार्थी के पूर्व अनुभव यानी कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका इंटरिंग बिहेवियर है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उस पर ही आधारित प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेकंड फेज जो इसकी दूसरी अवस्था है उसमें होती है इंक्वायरी, पूछताछ, खोजबीन, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन आदि। इस फेज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो समस्याजनक परिस्थितियां होती हैं उनके कारणों को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में वे अपनी रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी मेंटल पावर्स जो हैं, जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके एंटरिंग बिहेवियर्स हैं, उनके आधार पर जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो 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 उनके सामने चुनौती प्रस्तुत की गई है, जो उनके सामने चैलेंज दिया गया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के जो भी रीजंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें इस अवस्था में अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों से कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन करे, कुछ खोजपूर्ण प्रश्न करे, जिनके माध्यम से विद्यार्थी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के रीज़न कारणों का अनुशीलन इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तदुपरांत थर्ड स्टेज, तीसरा चरण होता है इसका, स्थानांतरण या ट्रांसफ़र। ये इस चरण में जो 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 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के की रीजनिंग के रीजंस को के कारणों का जब विद्यार्थी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो अध्यापक यहाँ पर यह कार्य करता है कि वो टैली करता है कि ये जो रीज़न ढूंढे गए हैं ये उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज की जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, उनके साथ मैचिंग इनकी है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो फिर सेकंड फेज़ में जा करके वो प्रोबिंग क्वेश्चन आदि करके ये रीजनिंग ढूँढने के लिए थोड़ा प्रयास करता है और पुनः विद्यार्थी के सम्मुख प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो थी उसके साथ उसकी मैचिंग कराता है, उसके रीज़न की मैचिंग कराता है और इन रीज़न को सॉर्ट आउट करने के बाद उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, जो हल हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको सर्च करने के लिए इंड्यूस करते हैं टीचर्स स्टूडेंट को। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सोशल सिस्टम कैसा है, इसकी सामाजिक प्रणाली कैसी है। तो इस मॉडल की सामाजिक प्रणाली संरचनात्मक है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है और बहुत ही ज़्यादा लचीली, फ्लेक्सिबल टाइप की सोशल सिस्टम है, इसमें सामाजिक प्रणाली है। और इसमें कोशिश ये की जानी चाहिए अध्यापकों द्वारा कि विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक विकास स्तर के अनुकूल जो भी बौद्धिक कार्य दिए जा रहे हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल टास्क दिए जा रहे हैं तथा जो समस्यामूलक परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, यानी कि जो उनके इंटेलेक्चुअल टास्क हैं वो भी उनको पर्याप्त रूप से प्राप्त हों और जो समस्या मूलक परिस्थितियां हैं उनके साथ भी उनका प्रॉपर इनकाउंटर होना चाहिए। और साथ ही साथ अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दे, स्वतंत्रता इस प्रकार से दे कि विद्यार्थी स्वयं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रेजेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसके हल को ढूंढने की कोशिश कर सकें। साथ ही साथ टीचर को चाहिए कि वो इंड्यूस करे स्टूडेंट्स को कि वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी का भरपूर उपयोग करें, और इस उपयोग के द्वारा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को न केवल शार्पन करें, बढ़ाएं, स्ट्रेंथन करें, बल्कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के सॉल्यूशन को ढूंढ करके अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी पहुँचाएँ। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन इस मॉडल में क्या होने चाहिए, इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अध्यापक को कुछ नियम ध्यान रखने चाहिए। अव्वल तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि अध्यापक को चाहिए कि वह एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, एक औचित्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करे जिसमें विद्यार्थी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकें। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग क्यूज, टीचर को चाहिए कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से के रीज़न और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉम्प्टिंग है, जो क्यूइंग है, वो भी करता रहे, कुछ ना कुछ उसको संकेत देता रहे विद्यार्थियों को, कुछ ना कुछ उसको मदद करता रहे, इंड्यूस करता रहे, जैसे प्रोबिंग क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था तो ये प्रोबिंग क्वेश्चन करके वो क्यूइंग कर सकता है, प्रॉम्प्टिंग कर सकता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन एंड काउंटर सजेशंस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोबिंग क्वेश्चन करने चाहिए और साथ ही साथ काउंटर सजेशंस भी देने चाहिए विद्यार्थियों को। कुछ उल्टे सुझाव दिए जा सकते हैं, विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है, कुछ उससे विपरीत सुझाव भी दीजिए जिससे उसका दिमाग चलेगा और वो अपना कार्य करने लगेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग इन ट्रांसफ़र, और साथ ही साथ एक समस्याजनक या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जिसका विद्यार्थी ने इनकाउंटर कर लिया है, जिसमें समस्या का समाधान विद्यार्थियों ने खोज लिया है, उसका प्रयोग जनरलाइजेशन में कैसे किया जाए, ऐसी ही समान परिस्थिति उत्पन्न होने पर उस समस्या का हल कैसे किया जाए, इसको भी देखना चाहिए अध्यापक को कि ये जनरलाइजेशन विद्यार्थी कर सके। सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए इस मॉडल ऑफ टीचिंग में, तो इस मॉडल ऑफ टीचिंग में जो सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए चाहिए एक नॉलेजेबल और ट्रेन टीचर, जिसमें जो विद्यार्थियों को न केवल मोटिवेट कर सके बल्कि प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर एक वह अध्यापक जो है एक डेमोक्रेटिक टीचर होना चाहिए, साइंस से उसको लव होना चाहिए, साइंटिफिक प्रोसेस की उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और जो भी उसके पास संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में सक्षम हो, विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। इस मॉडल का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी सभी स्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं को एड्रेस करता है, और जहाँ पर हम चाहते हैं कि विद्यार्थी के जो लाइफ के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उन डेवलपमेंटल स्टेजेस से नेक्स्ट स्टेज पर उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ले जाने के लिए हमारी आवश्यकता है, तब हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इस मॉडल का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक विकास स्तर के अनुकूल अनुदेशनात्मक कार्यों को आयोजित करना हो, तब भी हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल ऑफ टीचिंग का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।